नमस्ते, मैं आरव हूँ। नाइन आर ट्री के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज मैं इस पुस्तक का सारांश और समीक्षा करूंगा। हाइमन मिंस्की की पुस्तक स्टेबलाइजिंग एन अनस्टेबल इकोनॉमी, आधुनिक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में वित्त, निवेश और संकट के संबंध का गहन विश्लेषण है। पहली बार 1986 में प्रकाशित यह अर्थशास्त्र की पोस्ट केन्सियन परंपरा की महत्वपूर्ण कृति है। मिंस्की का केंद्रीय तर्क प्रचलित धारणा को चुनौती देता है कि बाजार स्वभावतः संतुलन की ओर बढ़ते हैं और संकट केवल बाहरी झटकों या नीति की भूलों से आते हैं। उनके अनुसार लंबी स्थिरता और समृद्धि स्वयं जोखिम लेने, बढ़ते कर्ज और कमजोर वित्तीय ढांचों को जन्म देती है। पुस्तक बताती है कि निवेश के वित्त पोषण का स्वरूप किस तरह सुरक्षित ऋण से सट्टात्मक और फिर पूंजी प्रकार की व्यवस्था की ओर सरकता है। मिंस्की केवल संकट का निदान नहीं करते, बल्कि केंद्रीय बैंक, वित्तीय नियमन, सरकारी खर्च और रोजगार नीति की स्थिरीकरणकारी भूमिका पर भी विचार करते हैं। 2008 के वैश्विक वित्तीय संकट के बाद इसकी प्रासंगिकता विशेष रूप से व्यापक रूप में पहचानी गई। मैं आपको इस किताब से मुख्य बातें बताऊंगा। सबसे पहले, वित्तीय स्थिरता परिकल्पना, स्थिरता से पैदा होने वाली नाजुकता। मिंस्की की वित्तीय अस्थिरता परिकल्पना का सबसे चुनौतीपूर्ण विचार यह है कि आर्थिक स्थिरता हमेशा सुरक्षा का संकेत नहीं होती। जब कारोबार, बैंक और निवेशक लंबे समय तक लाभ, कम चूक और अपेक्षाकृत शांत बाजार देखते हैं, तो वे भविष्य को अधिक निश्चित मानने लगते हैं। इस भरोसे के कारण ऋण देने की शर्तें ढीली पड़ती हैं, परिसंपत्तियों की कीमतें बढ़ती हैं और अधिक उधार लेकर निवेश करना सामान्य लगता है। मिंस्की के अनुसार इसी चरण में व्यवस्था भीतर से नाजुक बनती जाती है। जोखिम का आकलन हाल के अच्छे अनुभवों पर आधारित होता है, जबकि आय, ब्याज दरों और परिसंपत्ति मूल्यों में बदलाव की संभावना को कम आंका जाता है। इसलिए संकट किसी एक आकस्मिक घटना से शुरू होता दिख सकता है, पर उसकी बुनियाद उछाल के वर्षों में तैयार हो चुकी होती है। यह दृष्टि व्यापार चक्र को केवल उत्पादन, महंगाई या ब्याज दरों की कहानी नहीं मानती, बल्कि वित्तीय प्रतिबद्धताओं और नकदी प्रवाह की संरचना को केंद्र में रखती है। पुस्तक का योगदान यह है कि वह बताती है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में सफलता के दौर भी भविष्य के संकट की स्थितियां बना सकते हैं। इसीलिए मिंस्की के लिए नीति का लक्ष्य केवल गिरावट के बाद बचाव नहीं, बल्कि उछाल के दौरान बढ़ती वित्तीय कमजोरी को पहचानना भी है। दूसरा, हेज, सटात्मक और पोंजी वित्त के जरिए संकट की क्रमिक रचना। मिंस्की वित्तीय इकाइयों को उनके अपेक्षित नकदी प्रवाह और कर्ज भुगतान के संबंध के आधार पर तीन रूपों में समझाते हैं। हेज वित्त में किसी फर्म या परिवार की अनुमानित आय मूलधन और ब्याज दोनों चुकाने के लिए पर्याप्त होती है। यह अपेक्षाकृत मजबूत स्थिति है, क्योंकि पुनर्वित्त या लगातार बढ़ती परिसंपत्ति कीमतों पर निर्भरता कम होती है। सटात्मक वित्त में वर्तमान आय से ब्याज तो चुकाया जा सकता है, लेकिन मूलधन को आगे बढ़ाना या नया ऋण लेना आवश्यक होता है। पूंजी वित्त सबसे कमजोर अवस्था है, जिसमें नकदी प्रवाह ब्याज भुगतान के लिए भी पर्याप्त नहीं रहता और इकाई को पुराने दायित्व निभाने के लिए नया कर्ज या परिसंपत्ति मूल्य वृद्धि चाहिए होती है। मिंस्की का उद्देश्य इन श्रेणियों को नैतिक लेबल की तरह इस्तेमाल करना नहीं है। वे दिखाते हैं कि तेजी के दौर में सामान्य वित्तीय व्यवहार भी धीरे धीरे इन अधिक जोखिमपूर्ण अवस्थाओं की ओर बढ़ सकता है। यदि लाभ अनुमान से कम हो जाए, ब्याज दरें बढ़ें या संपत्ति की कीमतें रुक जाएं, तो पुनर्वित्त कठिन हो जाता है। तब मजबूर बिक्री, गिरती कीमतें और ऋणदाताओं की सतर्कता एक दूसरे को बढ़ाती हैं। इस ढांचे से स्पष्ट होता है कि तरलता की समस्या जल्द ही व्यापक साख संकट और उत्पादन तथा रोजगार में गिरावट में बदल सकती है। तीसरा, निवेश, लाभ और परिसंपत्ति कीमतों के बीच वित्तीय संबंध। पुस्तक निवेश को केवल बचत और ब्याज दर से निर्धारित होने वाली प्रक्रिया नहीं मानती। मिंस्की के विश्लेषण में निवेश निर्णय भविष्य के लाभ, व्यवसायियों की अपेक्षाओं, वित्तपोषण की उपलब्धता और परिसंपत्ति कीमतों से जुड़े होते हैं। जब कंपनियों को लगता है कि नई मशीनरी, इमारतों या अन्य पूंजीगत संपत्तियों से पर्याप्त आय मिलेगी और बैंक सहजता से ऋण देंगे, तो निवेश बढ़ता है। बढ़ता निवेश आय और लाभ को सहारा दे सकता है, जिससे प्रारंभिक आशावाद सही प्रतीत होने लगता है। लेकिन यही प्रक्रिया ऋण पर निर्भरता और ऊंचे परिसंपत्ति मूल्यों को भी मजबूत कर सकती है। यदि किसी संपत्ति का बाजार मूल्य उसके अपेक्षित आय प्रवाह से बहुत दूर चला जाए, तो वित्तीय सौदे निरंतर मूल्य वृद्धि पर निर्भर होने लगते हैं। मिंस्की इसीलिए वास्तविक अर्थव्यवस्था और वित्तीय बाजार के बीच अलगाव को अस्वीकार करते हैं। कर्ज की शर्तें, बैंकिंग व्यवहार और पोर्टफोलियो निर्णय कारखानों, घरों, रोजगार और उपभोग पर प्रत्यक्ष प्रभाव डालते हैं। गिरावट के समय समस्या सिर्फ निवेशकों के नुकसान तक सीमित नहीं रहती। परिसंपत्ति कीमतों में कमी से गिरवी का मूल्य घटता है, ऋण सीमित होते हैं और कंपनियां खर्च रोकती हैं। इस तरह वित्तीय तनाव आय और लाभ घटाता है और घटती आय बदले में वित्तीय तनाव को और गहरा करती है। चौथा, केंद्रीय बैंक की अंतिम ऋणदाता भूमिका और संकट नियंत्रण की सीमा। मिन्स्की केंद्रीय बैंक की अंतिम ऋणदाता भूमिका को गंभीर मंदी या अवसाद रोकने के लिए आवश्यक मानते हैं। जब वित्तीय संस्थाएं एक दूसरे को ऋण देना बंद करती हैं और परिसंपत्तियों की बिक्री तेज होती है, तब तरलता उपलब्ध कराने वाला सार्वजनिक संस्थान नीचे की ओर चल रहे चक्र को थाम सकता है। उनका तर्क है कि यदि ऐसी संस्था पूरी तरह बाजार शक्तियों को काम करने दे तो परिसंपत्ति मूल्य, निवेश, ऋण आधारित उपभोग, आय और रोजगार में गिरावट अधिक तीखी हो सकती है। इस अर्थ में हस्तक्षेप केवल बैंकों की सहायता नहीं, बल्कि व्यापक भुगतान व्यवस्था और आर्थिक गतिविधि को बचाने का उपाय है। फिर भी मिन्स्की का दृष्टिकोण बिना शर्त बचाव का समर्थन नहीं है। वे मानते हैं कि बार बार के बचाव की अपेक्षा बाजार प्रतिभागियों को अधिक जोखिम लेने के लिए प्रेरित कर सकती है। स्थिरता देने वाली संस्थाएं अनजाने में उछाल को लंबा और कर्ज को बड़ा भी बना सकती हैं। इसलिए उनकी सोच में संकट के समय तरलता सहायता और सामान्य समय में कठोर निगरानी दोनों जरूरी है। केवल ब्याज दर नीति पर निर्भर रहना पर्याप्त नहीं है, क्योंकि वित्तीय नवाचार और बदलती ऋण संरचनाएं जोखिम को नए रूपों में छिपा सकती हैं। पुस्तक नीति निर्माताओं को यह कठिन संतुलन समझने के लिए कहती है कि व्यवस्था को टूटने से बचाना है, पर ऐसी प्रोत्साहन संरचना भी नहीं बनानी है जो अगली अस्थिरता को बढ़ाए। अंत में पूर्ण रोजगार, सरकारी हस्तक्षेप और अंतिम नियोक्ता का प्रस्ताव, मिन्स्की की स्थिरीकरण नीति वित्तीय बचाव तक सीमित नहीं रहती। वे रोजगार को आर्थिक नीति का प्रत्यक्ष और प्राथमिक लक्ष्य मानते हैं। उनका तर्क है कि केवल निजी निवेश को प्रोत्साहित करके पूर्ण रोजगार पाने की कोशिश अस्थिर हो सकती है, क्योंकि निवेश लाभ की अपेक्षाओं और वित्तीय परिस्थितियों पर निर्भर है। उछाल में यह रणनीति अत्यधिक कर्ज और सट्टे को प्रोत्साहित कर सकती है, जबकि मंदी में निवेश गिरने पर बेरोजगारी तेज हो सकती है। इसके विकल्प के रूप में मिन्स्की अंतिम नियोक्ता या जॉब गारंटी की अवधारणा से जुड़े हैं। इसमें सरकार उन लोगों को काम उपलब्ध कराए जो निजी क्षेत्र में रोजगार नहीं पा रहे हैं। उद्देश्य केवल आय सहायता देना नहीं, बल्कि आय, कौशल, सामाजिक भागीदारी और मांग को रोजगार के माध्यम से स्थिर करना है। यह विचार कल्याण भुगतान की भूमिका को पूरी तरह नकारता नहीं, पर बेरोजगारी के उपचार में काम की केंद्रीयता पर जोर देता है। मिन्स्की के लिए सार्वजनिक क्षेत्र का खर्च भी उसके ढांचे और लक्ष्य के आधार पर आंका जाना चाहिए। यदि नीति का लक्ष्य सिर्फ निवेश की मात्रा बढ़ाना हो तो वह वित्तीय उछाल को बल दे सकती है। यदि लक्ष्य रोजगार और आय की स्थिरता हो तो सरकार मंदी में मांग का अधिक सीधा आधार बन सकती है। यह प्रस्ताव उनके व्यापक विचार से जुड़ता है कि एक स्थिर अर्थव्यवस्था के लिए वित्तीय संस्थाओं के साथ श्रम बाजार की संस्थाओं को भी सोच समझकर डिजाइन करना होगा। निष्कर्ष में स्टेबलाइजिंग एन अनस्टेबल इकोनॉमी उन पाठकों के लिए विशेष उपयोगी है जो वित्तीय संकटों को सतही बाजार घबराहट, कुछ खराब ऋणों या एकाकी नीति भूलों से आगे समझना चाहते हैं। अर्थशास्त्र के विद्यार्थी, नीति निर्माता, बैंकिंग और निवेश क्षेत्र के पेशेवर तथा असमानता, बेरोजगारी और वित्तीय नियमन में रुचि रखने वाले गंभीर पाठक इससे लाभ ले सकते हैं। यह आरंभिक स्तर की सरल अर्थशास्त्र पुस्तक नहीं है, क्योंकि मिन्स्की का तर्क निवेश, बैंकिंग, लाभ और सरकारी संस्थाओं के परस्पर संबंधों पर टिका है। फिर भी इसका मूल ढांचा अत्यंत उपयोगी है, क्योंकि यह पूछने की आदत डालता है कि वर्तमान लाभ और शांत बाजार किन वित्तीय वादों, पुनर्वित्त व्यवस्थाओं और जोखिम धारणाओं पर टिके हैं। समान विषय की अनेक पुस्तकों की तुलना में इसकी विशिष्टता संकट के बाद की घटनाओं का वर्णन करने के बजाय संकट से पहले बनने वाली वित्तीय नाजुकता की व्याख्या में है। मिन्स्की न तो बाजार को स्वचालित रूप से स्थिर मानते हैं, न ही सरकारी हस्तक्षेप को सरल सर्वोपाय। वे दिखाते हैं कि हस्तक्षेप आवश्यक हो सकता है, पर उसकी संरचना भविष्य के जोखिम व्यवहार को बदलती है। अंतिम ऋणदाता, नियमन और रोजगार गारंटी को एक ही व्यापक संस्थागत दृष्टि में जोड़ना भी इस पुस्तक को अलग बनाता है। पाठक को तैयार उत्तरों से अधिक एक विश्लेषणात्मक उपकरण मिलता है, जिससे वह उछाल, कर्ज विस्तार, परिसंपत्ति मूल्यों और मंदी के बीच संबंधों का अधिक सावधानी से मूल्यांकन कर सकता है। यदि आप समर्थन करना चाहते हैं मिन्स्की, आप इस किताब को पॉडकास्ट डिस्क्रिप्शन में दिए गए अमेज़न लिंक से खरीद सकते हैं। किताब पढ़ने के बाद मुझे जरूर बताएं कि आपको यह कैसी लगी और अपने विचार शेयर करें। फिर मिलते हैं।